ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। राष्ट्रपति इस समय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रही हैं।
करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसमें उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य यतो धर्मः ततो जयः अंकित है। महाभारत में इस काव्यांश का उल्लेख कई बार हुआ है। इसका भावार्थ है कि जहां धर्म है वहां विजय है।
दो दिन के सम्मेलन का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। इसमें जिला न्यायपालिका पर 5 सत्र, बुनियादी ढांचा, समग्र न्यायालय कक्ष, न्यायिक सुरक्षा, मुकदमा प्रबंधन और प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें और प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देने के निर्णय को परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है। श्री धनखड़ ने देहरादून में आज उत्तराखंड के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने और वैश्विक कल्याण में योगदान देने के लिए तैयार किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने एक अन्य कार्यक्रम में एम्स ऋषिकेश के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की निंदा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु में नवनिर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी के शयनयान डिब्बे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शयनयान वाली वंदे भारत परीक्षण के लिए तैयार है। अगले 3 महीने में यात्रियों को इन नए डिब्बों का लाभ मिलने लगेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि स्वदेश निर्मित वंदे भारत शयनयान में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। शयनयान वाली वंदे भारत में 16 डिब्बे और 883 सीटें होंगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज भारतीय डाक पेमेंट बैंक के 7वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि इस बैंक ने सुगम और किफायती सेवाओं के जरिए वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंधिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बैंक में अब तक लगभग 9,88,00,000 बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 45,000 करोड़ रूपये हस्तांतरित किए गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज मुंबई में जाने माने नाद स्वरम वादक शेषम पट्टे शिवलिंगम को संगीत कला विभूषण लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री षणमुखानंद ललित कला एवं संगीत सभा ने किया था। कार्यक्रम के दौरान श्री राधाकृष्णन ने 50 युवा नाद स्वरम वादकों को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की। ये छात्रवृत्ति संगीत वाद्य यंत्रों के संरक्षण और वादकों की सहायता के लिए दी जाती है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया। उन्होंने नई दिल्ली में पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। पेरिस पैरालंपिक के 4थे दिन आज पैरा बैडमिंटन में भारत के 2 पदक पक्के हो गए हैं। मनीषा रामदास ने SU5 वर्ग में महिलाओं के सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब उनका मुकाबला अपने ही देश की टी मुरुगेशन से होगा। इन दोनों में से जो भी खिलाड़ी फाइनल में पहुंचेगी उनका कम से कम रजत पदक पक्का हो जाएगा। वहीं पराजित होने वाले खिलाड़ी कांस्य पदक के लिए मैच खेलेंगी। पुरुषों के सिंगल्स SL4 सेमीफाइनल में सुकांत कदम का मुकाबला अपने ही देश के सुहास यथीराज से होगा। इनमें भी फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी का पदक पक्का हो जाएगा। पैरा एथलेटिक्स में रवि रंगोली पुरुषों के शॉटपुट F40 वर्ग के फाइनल में 5वें स्थान पर रहे। उधर रक्षिता राजू महिलाओं की 1500 मीटर T11 स्पर्धा की शुरुआती दौर से बाहर हो गई। शूटिंग में अवनी लेखरा मिक्स 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1 स्पर्धा में 11वें जबकि सिद्धार्थ बाबू 28वें स्थान पर रहे। यह भारतीय जोड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। पदक तालिका में चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। भारत 1 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक के साथ 22वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।